रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न जने नाभाजी ने भक्तों की वंदना की है और इतना ही नहीं भक्तों का चरित्र भी बहुत प्रेम से लिखा है। अभी उन भक्तों का नाम आ रहा है जो भगवान के नाम में ही बड़ी रुचि रखते थे, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे नारद जी हो, चाहे सनकादि हो, कपिल जी हो, सबका थोड़ा थोड़ा वर्णन हुआ। अजामिल का प्रसंग अंत में आता है। अजामिल प्रसंग यह है निर्णय परम धर्म के जान, इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। बारह भक्तों में अजामिल नहीं आते हैं। कहते अजामिल का प्रसंग आया है, उसमें इन बारह भक्तों का नाम स्वयं यमराज जी ने लेकर के भागवत में बताया है। प्रश्न होता है कि अजामिल का प्रसंग इतना नाभाजी को अच्छा क्यों लगा? जैसे भगवान की लीलाओं की गहराई होती है, ऐसे भक्तों की लीलाओं में भी बड़ी गहराई होती है। अजामिल का ऐसा प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा, आपने संभवतः नहीं सुना हो, सुना हो तो पता नहीं, संभवतः सुना नहीं होगा। हमने तो नहीं सुना, इसलिए हम हमारी दृष्टि से बोलते हैं, प्रसिद्ध भी नहीं है, भक्तमाल में प्रसिद्ध हुआ है। क्या बात थी कि ये अजामिल किसी जन्म में एक बहुत अच्छे ऋषि थे, बहुत उच्च कोटि के ऋषि, बड़ी साधना करने वाले, पर एक चीज की इनमें बड़ी भारी कमी थी कि वे दूसरों में दोष देखकर उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। जिस प्रकार से हमारा सारा शरीर बहुत ठीक है, सब जगह अच्छा है, पर एक अंगुली कटी हुई है तो सर्वांग नहीं कहलाएगी। नाक, कान, गला, सांस भी आ रहा है, जीवित है, अच्छा है, शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं, सब ठीक है, अंगुली कटी हुई है तो उसको सर्वांग नहीं कहते। ऐसे ही भजन साधन पूजन पाठ सब कुछ करते हुए भी यदि एक अवगुण रह गया बड़ा भारी, तो वो भजन वगैरह की महत्ता को कम कर देता है। तो वो दोष देखते और दोष देखकर उनकी बहुत खिल्ली उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, लोगों के सामने उनका अवगुण बताया करती, उनमें दोष था। तो तो ये तो आपने सुनाई है कि सत्यवती थी दासराज की कन्या, वो नौका में आने वाले लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर लाया करती थी। तो एक बार पराशर जी ऋषि जो वेद व्यास जी के पिता थे वो उस नौका में बैठे। देखो एक बात पहले से समझ लें कि कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है उसके द्वारा कुछ गलती होती है तो वास्तव में वो गलती हमें देखने का अधिकार नहीं है। अपने हृदय को इतना इतना विशाल बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए कि कोई गलती दिख जाए तो वो गलती हमारे अंदर जमे नहीं। बड़े पुरुष हैं, वेद व्यास जी के पिता है, तो वे सत्यवती के रूप पर मोहित हो गए। भगवान को कुछ ऐसी लीला उनसे करवानी थी पराशर जी से। पराशर जी ने वहां पर धुआं कर दिया और फिर वेद व्यास जी का जन्म हुआ। तो ये ऋषि भी इस बात को जानते थे, अजामिल जो पहले ऋषि थे वो जानते, उनको पता चला कि पराशर जी ने इस प्रकार सत्यवती को गर्भित कर दिया, हाँ ये धुआं करके। तो पराशर जी की बड़ी निंदा करने लगे, लोगों को दोष, देखो पराशर जी ने ये किया, देखो पराशर जी ने ये किया, देखो पराशर जी ने ये किया। कई लोगों ने समझाया कि देखो ऋषिवर, बड़े पुरुषों की गलती को देखना अपनी गलती होता है, हमारी गलती कैसे है, ये कोई सभ्यता है इनकी। कि देखो पराशर जी है ये बहुत वैराग्यवान, बड़े तितिक्षु, बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं, और जो भगवान के हो जाते हैं उनके द्वारा कोई लीला होती है तो भगवान करवाते हैं। कि ये कोई भगवान करवाते हैं, भगवान के भगत होते हैं उनसे तो कभी कोई गलत काम होता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बड़े पुरुषों से कभी गलती होती नहीं, भगवान के भक्त वो गलती करते नहीं, गलती करते तो भगवान के भक्त कैसे, पर है बड़े भक्त इसमें कोई संदेह नहीं, भगवान को कोई न कोई लीला करनी है। प्रभु नहीं माने, दोष देके एक दिन पराशर जी मिल गए। ये पराशर जी इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, खूब वो बकने लगे। पराशर जी ने कहा देखो इस एक अपराध के अलावा मेरे जीवन का कोई अपराध है क्या, कि और तो अपराध नहीं है। यदि कोई अपराधी होगा तो वो अपराधी अपराध जीवन में करेगा, तो इस प्रकार से तुमको ये बात नहीं कहनी चाहिए। क्या पता भगवान क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं भगवान, आप ऐसे हो आप ऐसे हो, खूब उनकी फिर निंदा कर। तो पराशर जी ने देखा कि इससे लोगों के अंदर अच्छा वातावरण नहीं फैलेगा, इसके उसको शाप दिया पराशर ने कि जा तू अगले जन्म के अंदर वेश्या के साथ रहेगा, तू ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा और वेश्या के साथ रहेगा। तो वो डर गया कि पराशर ऋषि है तो बड़े विलक्षण दोष देखते हो। तो आदमी को दोष देखना चाहिए, दोष दृष्टि होनी चाहिए, पर किसके प्रति, अपने प्रति। अपने दोष देखो, केवल अपने दोष देखो। सेठ जी ने तो यहां तक लिखा है कि जिसको दूसरे में दोष दिखते हो उसको सोचना चाहिए कि दूसरे में नहीं तो मेरे में ही है जो इसमें दिखते हैं। जैसे कांच में हम मुंह देखते हैं तो हमारे यहां पर कोई धब्बा लगा हुआ है तो ये कांच में थोड़ी लगा है, ये हमारा मुंह कांच में है इसलिए हमारा धब्बा कांच में दिखता है। ऐसे ही दूसरों के जितने भी जीवन है वो तो कांच है और हमारा जीवन है वो प्रतिबिंब पड़ता है, तो हमारा ही दोष है। दूसरों में गुण देखने की वृत्ति होनी चाहिए, अपने में दोष देखने की वृत्ति रहनी चाहिए। आज सुबह की प्रार्थना के प्रवचन में महाराज जी ने इस विषय को खूब खोला है। दूसरे के दोष देखने से और उसका रुचि पूर्वक वर्णन करने से वो दोष हमारे अंदर जम जाता है। का दोष देखते हम, अरे वो भगवान का अंश है, वो तो हम देखते नहीं, दोष देखते हैं। भगवान का अंश है, भगवान का स्वरूप है, दोष तो कोई स्वभाव में हो गया, कोई क्रिया में हो गई, इसलिए वो दोषी हो गया। दोष पूर्ण काम करने से कोई दोषी हो गया, ये गलत है। ये बात, ये समझ हमको नहीं रखनी चाहिए किसी के प्रति भी। तो दोषी नहीं है वो, भगवान का अंश है। यदि वो मूलतः दोषी होता तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य बाघ, ये कैसे होता? वो दुराचारी कैसे शुद्ध हो सकता है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कैसे हो सकता है? दोष आगंतुक है, आए और जा भी सकते हैं, इसलिए आने जाने वाले पर नहीं, रहने वाले पर देखना चाहिए कि अमुक परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप, ये परमात्मा का स्वरूप। पराशर जी ने समझाया, देखो ऋषिवर, मेरे यहां साक्षात भगवान अवतार लेने वाले व्यास के रूप में, और वो दुनिया को ये बताते हैं कि नीचे कुल में जन्म लेने पर भी मैं नीचा नहीं होता हूं। ये तो मत्स्य गंधा थी और दासराज की कन्या थी, कोई बहुत ऊंचे कुल में नहीं थी। वहां व्यास जी ने पराशर जी से जन्म लिया सत्यवती के यहां, लेकिन उसका कौमार्य नष्ट नहीं हुआ, उसका कौमार्य नष्ट नहीं होता, उसका सतीत्व नष्ट नहीं हुआ, ये कोई कम बात है क्या? तब वो ऋषि पैरों में पड़ गया कि हे महाराज, मेरे से बड़ी भूल हो गई, दोष दृष्टि का स्वभाव, आज मैं कितने बड़े खतरे को मोल ले लिया, अब महाराज मेरे पर कृपा करो, आपने मुझे वेश्या के संग में जाने का शाप दे दिया, कृपा करो। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तो पराशर जी ने कहा कि देखो, तुमने अपने दोषों के लिए इतना प्रायश्चित कर लिया है तो कोई बात नहीं, तेरा उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन जो कहा है वो तो तेरे को भोगना ही पड़ेगा। ठीक, वो ही अगले जन्म में अजामिल बनकर आया, कन्नौज में जन्म लिया और कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। बड़ा अच्छा परिवार था, वेद वेदांत को जानने वाला था, खूब उसने अच्छा अध्ययन किया। पिता तो बड़े अच्छे कर्मकांडी थे, स्वयं भी अच्छा कर्मकांडी, पवित्र ब्राह्मण, बड़ा अच्छा जप तप करने वाला, सदाचारी, जितेंद्री और पुराण आदि शास्त्र में प्रवीण, ऐसा था। पिताजी ने आज्ञा दी कि बेटा यज्ञ करते हैं, संविधाएं नहीं है, यज्ञ के अंदर जो ज्वलन की सामग्री होती है उसको लकड़ी नहीं बोलते हैं, उसको लकड़ी नहीं बोलते, उसको ईंधन भी नहीं बोलते, उसको संविधा बोलते हैं। तो संविधा नहीं है, तो पवित्र पवित्र लकड़ी, जैसे पीपल की लकड़ी है, जैसे और है, जो जो शास्त्र में बताए वो लेने के लिए जंगल में गए। संविधाएं उन लकड़ियों को कहा जाता है, स्वाभाविक ही वृक्ष से पककर के नीचे गिरती है और वो सूखी होती तब नीचे गिरती, उनको लेकर के उनसे यज्ञ किया जाए, पॉल्यूशन वगैरह सब, और वैसे अंतःकरण की निर्मलता के लिए यज्ञ करना हमारा तो अनादि काम है। भारतीय ऋषि मुनियों ने अनादि काल से यज्ञ की परंपरा रखी है। तो ऐसी बात हुई, आप थोड़ा आगे खिसक के बैठे ना तो आने वाले भी नहीं बैठ जाए, बीच में से जाते हैं ना तो वो अनध्याय का स्वरूप होता है। शास्त्र में आता है ऐसे, उपनिषदों की कथा हो, सत्संग होती हो और सामने से कोई निकलता हो तो अनध्याय मानते हैं, और पीछे यदि जगह होगी उसमें निकलना चाहिए। अस्त अस्त सीधा भाव है ना, वो भाव रुकता है वक्ता, वक्ता और श्रोता ही सीधे रहने चाहिए। अस्त अस्त तो वो संविदा लेने के लिए वन में गया, वहां उसने मदिरा पिए हुए एक शूद्र को देखा और एक शूद्रा को देखा, उसको देखा और उसकी बुद्धि खराब हो गई। अब प्रश्न पैदा होता है कि इतना अच्छा आदमी, इतना संस्कारी, घर में जन्म लेने वाला और जो स्वयं भी शास्त्र को जानने वाला, जो सब कुछ है, लेकिन वो एक शूद्रा को, शूद्र जाति की स्त्री को और वैश्या को किसी के साथ देखते ही उसके मन पर इतना गंदा प्रभाव पड़ा, ये क्या कारण? फिर तो साधन भजन का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो ये छोटी छोटी बातें तो बहुत बड़ी घर कर जाती है। तो इससे क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए? ये मिलने, इससे ये मिला जाता, इससे ये शिक्षा मिलती है कि सावधानी जीवन में नहीं रखते। भजन करते हैं, साधन करते हैं, शास्त्र को भी पढ़ते हैं, हवन आदि करते हैं, पवित्र क्रिया करते हैं, लेकिन हमारे अंदर अनादि काल के खराब संस्कार भरे पड़े हैं। वो खराबी से खराबी बहुत जल्दी मिल जाती है। अच्छे संस्कार तो हम अभी कर रहे हैं और खराब संस्कार हमारे पास अनादि काल के हैं। अब हमारे अच्छे संस्कार ज्यादा मात्रा में हो तब तो इनको दबा दें, लेकिन अपने जीवन में, पिछले जीवन में खूब खराब संस्कार भर लिए, अब अच्छे संस्कार तो इस जन्म में भर रहे हैं और वो भी यूं ही धीरे धीरे बेपरवाही से बिना रुचि के, तो वो खराब संस्कार तो खराबी की बात आती उसको पकड़ लेती है, वो उसको दबा देती है अच्छे संस्कारों को, थोड़े होते हैं और उनकी भी रुचि नहीं होती। इसलिए अच्छा काम हम करते हैं दबाव से और बुरा काम करते हैं रुचि से। वो रुचि थी ना, वो रुचि उसकी उसने बदली नहीं थी, क्रिया तो अच्छी की, रुचि नहीं बदली, तो उसका उस वेश्या में मन चला गया। क्योंकि शास्त्रों में इस बात को लेकर बहुत सावधान रहने के लिए कहा है। वो भी पढ़ता था, अजामिल भी शास्त्र पढ़ता था, उसमें व्यास जी का ये वचन आया कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपिकर्षति। माता के समान यदि कोई है और बेटी के समान कोई है, बहन भी है, बहन की उम्र वाली, बेटी की उम्र वाली, माता की उम्र वाली, तो भी मनुष्य को एक साथ नहीं बैठना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। तो मर्यादा में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इंद्रियां कभी भी हमको धोखा दे सकती हैं, बड़े बड़े विद्वानों को धोखा दे देती है। तो ये व्यास जी ने एक शब्द लिखा था, ये श्लोक लिखा था, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि, बड़े बड़े विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती है। हमारे शास्त्र में ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं तो लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है कि देखो विश्वामित्र जी इतनी तपस्या करते थे, वो भी अप्सराओं में फंस गए, वो अप्सराओं में फंस गई, बात क्या है? ये बात ऐसी है हम लोगों को सावधान करने के लिए। वास्तव में ऐसे है नहीं वे ऋषि, हमको सावधान करने के लिए करते हैं। कभी आप पढ़ाई के अंदर देखते होंगे कि अध्यापक है वो गलत एक प्रश्न का गलत उत्तर लिखता है एक तरफ, और एक तरफ सही उत्तर लिखता है, फिर कहता है भाई देखो ये दो उत्तर है इनमें सही कौन सा है। अब जो लड़का पढ़ा नहीं है, ध्यान नहीं देता है, गुरु की वाक्य को सुनता नहीं है, वो जो गलत लिखा है ना कह साहब ये सही है, तो गुरु जी कहेंगे गलत, ये सही कैसे है बता, कैसे सही है ये? आपने लिखा है ना कि मैंने तो लिखा है तेरी परीक्षा के लिए, मेरे लिए थोड़ी लिखा है, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने लिखा है। ऐसे ही बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष एकांत में रहने वाले, फिर उनके जीवन में ऐसी ऐसी हम लोग चर्चाएं सुनते हैं, तो वो सावधानी के लिए है, वो कोई ऋषि ऐसे थे इस बात के लिए नहीं, वो बताना चाहते हैं कि भाई इतने सावधान रहने वाले भी थोड़ी सी असावधानी से वे फिसल गए, तो वही सबको सावधान रहना चाहिए। तो ये व्यास जी ने श्लोक लिखा था। तो व्यास जी के एक शिष्य थे जैमिनी, अच्छे विद्वान पुरुष थे जैमिनी, उनका भी एक दर्शन चलता है जैमिनी दर्शन। उन्होंने गुरुजी का वाक्य देखा, कहा कि गुरुदेव ये वाक्य ये श्लोक तो आपका आप यहां से बदलना चाहिए। क्या बदलोगे बेटा? कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विवित्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सम नापकर्षति, माँ के समान बेटी के समान बहन के समान हो तो भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए तो ठीक है, लेकिन जो बल विद्वान पुरुष होते हैं उनका तो मन आकर्षित नहीं होता, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनकी इंद्रियां उनको कुमार्ग पर ले जा सकती हैं। व्यासिन का कोई बदल दो, बड़े पुरुष होते हैं वो जिद नहीं करते, करना कर दो भाई तुम्हारी मर्जी है जैसा, मेरे तो जस्ता नहीं है। तो उन्होंने व्यास जी ने जो श्लोक लिखा था उसके ऊपर उन्होंने हल्दी लगा दी, हल्दी। आजकल तो अपने लोग लिखते हैं उसको काट देते, काटना अच्छा नहीं मानते थे, संतों की भाषा है, साग को भी नहीं कहते साग काट लो, मारवाड़ी में साग बंदा और साग अमनिया कर लो, आलू काट लो नहीं, आलू काटो, ककड़ी काटो, काटना सब बुरा बात है। कितनी शब्दों में भी कोमलता रहे, तो अक्षरों को काटते नहीं, उसके ऊपर हल्दी लगा देते, लिपि हल्दी लगाने से वो दिखता नहीं था। ठीक है सर, व्यास जी ने देखा कि लिखी हुई पर हल्दी लगा दी। व्यास जी ने कहा, मन में सोचा कि बहुत से बातें ऐसी हैं जो मनुष्य को समझने यूं समझ में नहीं आती, अनुभव से समझ में आती है। मोटर एक जगह प्रकाश करती है, फिर आगे से आगे प्रकाश तो चलती रहती है, तब वो प्रकाश करेगी। अब यहां से बीकानेर थोड़ी दिखी आया है, जो जो गाड़ी चलेगी अंधेरे में प्रकाश करते करते हम बीकानेर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से सदगुरु का ज्ञान है, वो जो जो उस ज्ञान पर चले तो क्यों उसके अंदर स्वतः ही कुछ अनुभव होते हैं, वो अनुभव होता है, वो असली ज्ञान होता है। तो देखा कि जैमिनी को कुछ न कुछ इस विषय में अपने अनुभव करा रहा है। ठीक है, व्यास जी महाराज अपनी जगह रहते, जैमिनी अपनी जगह रहते, सब ऋषि मुनि अपने अपने रहते थे स्थानों पर। एक दिन जैमिनी ऋषि ने देखा सुना कि उनकी कुटिया के पास एक स्त्री बहुत जोर से चिल्ला रही है, रो रही है, कोई मेरी सहायता करो, बरसा बरस रही है, मुझे किसी गांव जाना है, मेरे पास कुछ वस्तु भी है और कोई लूट न ले, मैं शरण में आई हूं, कोई मुझे बचाओ। तो जैमिनी थे, संत थे, हृदय कोमल था। बाहर आए तो देखा है कि स्त्री रो रही है। चलिए कोई कौन हो तुम, ऐसा मैं एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी, अब रात हो गई, बरसात बरस रही है, रास्ता भूल गई, रात रात में विश्राम चाहता हूं। तो कहा कि देखो ये भी हमारी कुटिया है, उसमें तुम चली जाओ और कोई भी यदि आके खटखटाए तो खोलना नहीं, चाहे मैं भी आऊं तो भी खोलना नहीं, वहां पर बैठी रहे। अब जैमिनी ने मन में विचार किया, इसके पास खूब धन है, धन तो मेरे को नहीं लेना है, पर स्वयं बड़ी रूपवती है। जैमिनी का धीरे 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 चित्त में खराबी आने लगी और वो जाकर के किवाड़ खटखटाए तो वो स्त्री बोलती है, कौन हो आप? अरे मैं वही हूं जिसने तुमको यहां आश्रय दिया है। कि नहीं, आपने मना किया, नहीं खोलना, मैं नहीं खोलती। तो जैमिनी ने क्या किया, ऊपर चढ़ करके और वो घास फूस थे वो सब हटा दिए और स्वयं नीचे कूदे कूदे और वहां जाकर उस स्त्री को देखा तो स्त्री नहीं थे, वो तो वेद व्यास जी थे। और यू माथे पर यू हल्दी लगाई गई। तब जैमिनी उनके चरणों में गिर गई, रोने लगी कि गुरुजनों की बात के ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, वो जो बात कहते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, मेरे से बड़ी बड़ी भूल हो गई। तब कहा अब मुझे आशीर्वाद दोगा, क्योंकि आशीर्वाद के बिना पार पड़ने वाली नहीं, कृपा के बिना पार पड़ने वाली नहीं, मेरी बुद्धि कभी भी खराब रास्ते पर न जाए। व्यास जी ने कहा कि हमारी इस बात को स्वीकार कर लेते तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। तुमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, जो अच्छे विद्वान पुरुष है उनका चित्त ऐसे थोड़ा ही होता है। तुमने उस समय अभिमान किया था तो अब बताओ कि तुम्हारे चित्त में ये बात बैठी कि नहीं। महाराज अक्षर से आदर करूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि जाओ, अब तुम्हारे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्त्री आदि का तुम्हारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो ऐसी घटनाएं होती हैं केवल सावधानी लाने के लिए होती है। तो अजामिल ने जो है इस प्रकार से उस वेश्या को अपने घर में रख लिया, सती साध्वी को निकाल दिया। सती साध्वी को निकाल देने के बाद अब जो है वो कुकर्म में लग गया, वहीं वसवाई रहा, ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, मदिरा पीना, मांस खाना, ये सब उसने चालू कर दिया। पराशर ऋषि ने एक बात कही थी कि तू जब मेरी शरण में आ गया है ऋषि, तो मैं ही तेरा उद्धार करने के लिए आऊंगा। तो वो पराशर ऋषि साधुओं की जमात लेकर के उस गांव में आया। गांव में आकर के लोगों से पूछने लगे कि यहां पर कोई संत पुरुष है क्या? तो किसी मस्खरे ने कह दिया कि हाँ, हमारे यहां तो अजामिल की बड़ी दुष्कीर्ति थी, बड़ा अपमान था उसका गांव में। ऐसे होगा तो अपमान ही होता, तो कोई संत पुरुष है क्या? कि हाँ, हमारे यहां अजामिल साधु पुरुष, साधु पुरुष। तो संतों की जमात लेकर के पराशर जी पहुंच गए वहां। उसके घर पर पहुंचे तो वो वेश्या थी, वो श्रृंगार कर रही थी। संत वहां आए तो संतों को देख तो लिया, पर संतों को देख करके भी वो श्रृंगार करने लगी, अपने को सजाने धजाने लगी। तो वो मंडलियां आई ना मकान तक, तो पराशर ऋषि ने उसको गौर से देखा। उनके देखने में उनको जो है ज्ञान देना था, वो ज्ञान दे दिया, गौर से देखा। वो शक पका गई वेश्या, वेश्या शक पकाए कि अरे इतने बड़े अच्छे अच्छे महात्मा मेरे घर आए, मैं इनके सामने श्रृंगार करूं? तो उसने अपने श्रृंगार तो करने बंद कर दिए, आकर के हाथ जोड़ी, कहने लगी महापुरुष महात्माओं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। उन्होंने कहा कि तुम श्रृंगार ऐसा श्रृंगार करती हो? श्रृंगार केवल अपने घर के अंदर पति के लिए श्रृंगार होता है, तुम्हारा श्रृंगार कोई दूसरा देखे नहीं, यही स्त्री का श्रृंगार होता है। तुम खुले बालों को लिए खुल्लू सजा रहे हो, आंखों में खुला काजल डालते हो। कहा कि महाराज, हमको तो आज तक किसी ने बताया भी नहीं और मैं ऐसी हूं भी नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। अब उसके अंदर क्या हुआ, यूं महात्मा जी ने देखा ना तो दृष्टि से ज्ञान का प्रवेश उसके अंदर, वेश्या के अंदर। चार प्रकार की दीक्षा होती है, बोलने से होती है, देखने से होती है, चिंतन से होती है और स्पर्श से होती है। ये मोर वगैरह की स्त्री होती है, मोरडी, वो अपने अंडों को यूं स्पर्श किए रखती है। स्पर्श किए रखने से अंडे पकते 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 फिर वो मोर या मोरडी बन जाते हैं। यदि वो उनको छोड़ दे तो उनका पोषण बंद हो जाएगा। ऐसे ही कछुए कछुई होती है, वो अपने अंडे तालाब के बाहर देती है और हरदम याद करती रहती है कछुई। तब क्या होते वो, यदि उसका चिंतन बंद हो गया तो वो वहां पर अंडे गल जाते हैं। खता खता इसी प्रकार से भौंरा, ये भौंरा होता है पिड़ाई, ये शब्द बोलता रहता है, तो वो कीड़ा है ना, उस शब्द के साथ एक होते 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 है तो भी जाती लेकिन निकलता है वो ऐसी जाती का बड़ बड़। एक होती दार्ष्टि दृष्टि भी होती है, कोई मछली की बताते हैं, कोई और कोई बताते हैं, दृष्टि हरदम देखते रहते। ऐसे संतों में भी चार प्रकार की दीक्षा होती है, दार्ष्टि दीक्षा दृष्टि से, एक वाचिक दीक्षा वाणी से, अपने लोगों को महापुरुष संत महापुरुष कोई अच्छी बात सुनाते हैं तो ये वाचिक दीक्षा होती है, कोई स्पार्शी दीक्षा होती है, किन्हीं किन्हीं के सिर पर हाथ रख देते हैं गुरु जी, स्पार्शी दीक्षा होती स्पर्श दिया। और प्राय लोग कहते हैं महाराज थे माने याद रख दियो, महाराज जी को बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी माने याद रख दियो, मैं तो आज जावा महाराज जी क्या थाने याद रखू भगवान ने याद रखू बताओ, थाने याद रखने से कल्याण हुए तो थाने रखू याद। महापुरुषों के सत्संग में जाने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता था, अच्छे महापुरुष के दर्शन करने का लाभ ये होता कि महापुरुष वाणी कहें अपनी श्रद्धा से माने तो महापुरुषों के एक संकल्प पैदा होता कि इन प्राणियों का कल्याण होना चाहिए, तो अपने लोगों को सत्संग में लाभ होता है, तो वो लाभ अपने कारण से नहीं हुआ, वो महापुरुषों ने संकल्प कर लिया। महापुरुषों ने संकल्प कर लिया कि भाई ये लोग अपना काम धंधा छोड़कर आए हैं, बाल बच्चों की सेवा का काम भी छोड़कर आए हैं, संसार का काम छोड़कर के आए हैं और सत्संग में आए। इनके अंदर कल्याण की भावना है, इनका कल्याण होना चाहिए, उनका एक संकल्प बनता है और उसी संकल्प को लिए वे महापुरुष बोला भी करते हैं, प्रवचन करते हैं, वो संकल्प हमारे काम आ जाता है, वो संकल्प हमारे काम आता है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए क्योंकि महापुरुष का संकल्प हमारे काम आ जाए, और हम सत्संग में जावे ही नहीं, महापुरुषों की दृष्टि में बैठे ही नहीं। सेठ जी बैठे पूछते थे, अरे कौन कौन आयोड़ा है, नाम सुनाओ। मृत्यु अवस्था में जहां भगवान के नाम सुनाने की बात सेठ जी बराबर कहते थे, मृत्यु अवस्था में सेठ जी ने कहा गीता भवन में कौन कौन आया है, मैं नाम सुनाऊं। गीता भवन नंबर एक में कौन आया है, दो में कौन है, तीन में कौन है, कौन कौन आयोड़ा है, मन से सगड़ा का नाम सुनाऊं। तो फिर आपस में ही लोगों ने विचार किया कि सेठ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सेठ जी जाते जाते इन सब का नाम सुन करके इन सब के कल्याण का संकल्प लेकर जाना चाहता था। जैसे कोई अपने बड़े अफसर के पास काम करने के लिए जाए, इतना इतना काम है, तो इन सब आदमियों का काम लेकर के बड़े अफसर के पास जाए, ऐसे भगवान के पास इन लोगों के कल्याण की बात, कल्याण का संकल्प लेकर जाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। पर ये कोई विलक्षण महापुरुषों के हाथ की बात है, हर किसी के हाथ की बात नहीं है। अस्तु, तो सत्संग के अंदर ये होता है, तो वो यूं देखे ना उस वेश्या को, वेश्या का हृदय एकदम बदल गया। जो एक क्षण पहले उनकी कोई उपेक्षा ही कर रही थी, ध्यान नहीं दिया, यूं देखा गौर से, देखते ही उसके मन अरे मैं क्या कर रही हूं, महापुरुष आए हैं, गई प्रणाम की, अजामिल साधु है ना, हाँ महाराज वो बाहर गए, अरे हमने तो अजामिल साधु से मिलने के लिए ही प्रयास किया है, क्या महाराज अभी बुलाता है। अब उसके दिमाग में शब्द गूंजता रहा, अजामिल साधु, अजामिल साधु। बाहर गई और उसने सबसे पहले दुकान पर जाकर धोती चोला और ये सुमिरनी माला, राम राम का दुपट्टा, ये चंदन, ये सब खरीद लिया, खरीद करके सामान रख करके और एक ऐसी जगह पर बैठ गई कि चाहे किधर से भी आएंगे वो इधर से वहां तो आएंगे। वो गया था जंगल में शिकार खेलने के लिए, तो किधर से आएगा, यहां तो आना ही पड़ेगा, तो यहां आते ही हम उसको संभाल लेंगे। थोड़ी देर में आया एक खूब से पशुओं को मार करके, पक्षियों को मार करके, वो लग गया, बकरा मारा वार, ऊंट मारा वार, वो मारा वार, लदा हुआ आया, तो वेश्या ने देखे छी 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 आई, क्या हो गया तेरे, छी छी कैसे करती है, छोड़ो इसको, किसको ये ना, ये आपने इतना ही मांस के पक्षी सब पशु पक्षी मारे, उन सबको छोड़ो, उनसे लतपत हो गए, नहाओ धो और मैं कपड़ा लाई हूं, कपड़ा पहन, कि तू आज पागल हो गई क्या, पागल नहीं हो गई, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, मेरी बात मानी, तो उसकी बात तो मानता ही था, तो सब पशु मारे हुए सबको फेंक दिया, खून से लथपथ गंदे कपड़े थे सब कपड़े हटा करके, स्नान वगैरह करा करके और एकदम साधु जैसा उसको बनाया, छापा तिलक लगा करके, हाथ में सुमिरनी और माला, सुमिरनी माने वो कोथली और माला यू बांध ली उसके, फिर कहा कि हमारे घर में, अपने घर में संत आए, उन संतों के जाकर चरणों में प्रणाम करना, और उन संतों को ये बोलना कि संतों को जाकर के बोलना कि आपने बड़ी भारी कृपा की, हमारे घर को आपने पवित्र कर दिया। अब मैं आपका दास हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो आप आज्ञा देंगे वो काम मैं करूंगा। बोलोगे ना? हाँ बोलेंगे। क्या बोलोगे जरा बताओ। मैं कहूंगा, मैं उनको ये कहूंगा कि आप लोगों के बड़े अच्छे भाग्य हैं कि आप मेरे दर्शन करने के लिए घर पर आए हैं, आप मेरे दास हैं, मैं आपका स्वामी हूं। बोलो, आपको मेरी आज्ञा माननी होगी कि नहीं? अरे बाबा, उल्टा पुल्टा बोलोगे मुश्किल हो जाएगी। बाबा आप चुप रहना, एकदम चुप रहना, बोलना नहीं, केवल उन संतों के सामने हाथ जोड़ करके बैठे थे। कि हाथ कैसे जोड़ोगे बाबा? ऐसे ऐसे ऐसे, और कुछ मत बोलना। क्या ठीक है? ऐसे खूब अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा करके और वो वेश्या अजामिल को लेकर आई संतों के सामने। कहा कि महाराज, ये मेरे पतिदेव हैं। वही पराशर ऋषि, यूं गौर से देखे उसको भी, गौर से देखा। अच्छा, अजामिल साधु पुरुष आप ही हैं। और महात्मा ने देखा ना, देखी उसके हृदय से एकदम भाव बदला, इतनी श्रद्धा उमड़ी, रोते रोते जाके चरणों में गिर गया। महाराज, साधु पुरुष ये अजामिल, मैं साधु पुरुष और आपके मुख से निकल गया वाक्य। वेश्या ने पहले ताड़ दिया कि साधु पुरुष आज संतों के मुख से निकल गया है तो मेरा पति तो अब साधु पुरुष हो ही रहेगा। और जो ही अजामिल जाकर उनके चरणों में गिरा, त्यों ही वेश्या बड़ी आनंदित हो गई। बड़ा अच्छा हुआ, अब ये साधु पुरुष होंगे। खूब तो रोया अजामिल, खूब चरणों में गिर करके रो करके अपने मुंह से अपने पाप प्रकट करने लगे। संत चुपचाप सुनते रहे, बोलने दो। अब वो कहने लगा, महाराज और किसी के घर पधारते तो आपको जाने क्या क्या भेंट करते, और मैं आपके यहां ऐसा हूं, आप मेरे यहां आए, मैं अपने पाप भेंट कर रहा हूं। संतों ने कहा, ये भेंट हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती है, पाप भेंट कर। बोलते जाओ, तो जो कहना है कहते जाओ। रोवे कहे, संत बड़े खुश हो रहे थे, रोने से भी खुश होते हैं। क्या हुए? ये रोना और ढंग का है, इस रोने से उसका पाप निकल रहा है अंदर से, पाप की वृत्ति खत्म हो रही है, पाप की वृत्ति खत्म। जैसे कोई गंदगी निकलती हो, घर से पानी सारा खत्म हो गया कुंडी का, लेकिन गंदगी निकल गई तो कोई हर्जा नहीं, गंदगी निकल रही है। चुपचाप सुनते रहे, सुनते, अंत में कहा कि अजामिल अब तुम क्या हो, तुम साधु पुरुष हो कि वही खराब पुरुष हो? अब तुम्हारी हृदय में वृत्ति क्या है? बस महाराज, आपके चरणों के दर्शन हो गए, अब मेरे अंदर सब प्रकार की जो है ये खराबी वगैरह निकल गई, अब मेरे मन में कोई खराबी नहीं है। तो कहा, अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि अब तुम्हारे संतान हो उसका नाम नारायण रख देना। अब तो है, चले गए संत। संतों के जाने के बाद ऐसा वो भजन में लगा, उस साधु वेश तो बना ही दिया, खूब भजन करने लगा, भजन ही भजन में मस्त रहा। और अंतिम समय में क्या हुआ, जो सब आप भागवत आदि में पढ़े हो, जो बात पढ़े उसको आप देख लीजिए। तो ये जो अजामिल का प्रसंग है, ये कितना विचित्र प्रसंग है, कितना बिगड़ेला आदमी, इतना गंदा आदमी। अच्छा, इतना अच्छा भी था ये भी बात कम कम। अच्छा है, आदत से बिगड़ गया। उसकी आदत थी दूसरों में दोष देखने की, औरों में देखने को, बड़े आदमी में दोष देख लिया, और क्या पतन हो गया। और फिर जो है उनके हिसाब से वो वेश्या के साथ में रहा, लेकिन उन महापुरुषों की दृष्टि से वो पवित्र हो गया। इतना पवित्र हुआ, इतना पवित्र हुआ कि उसको साक्षात भगवान के दूत लेने के लिए आए। तो मनुष्य को कभी अपने खराब स्वभाव से हताश नहीं होना चाहिए कि मेरी पारमार्थिक उन्नति नहीं हो सकती, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। पारमार्थिक उन्नति खूब आनंद से हो सकती है, लगन की बात है, लगन होनी चाहिए। एक बात शास्त्र की देखते हैं कि आत्मनोमुख दोषेण बद्यन्ते सुख सारिका। आदमी ज्यादा बोलता है ना तो वो बंद जाता है। जैसे तोता है, बोलता है तो लोग, अरे तोता है तो पकड़ लो, सारिका है, मैना है तो पकड़ लो। तो तोता और मैना को सब पकड़ते हैं, क्योंकि आत्मनोमुख दोषेण है, वो ज्यादा बोलता है इसलिए पकड़ में आ जाते हैं। बकास तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। जो बगुले होते हैं उनको कोई नहीं पकड़ता, जानते हैं कि बगुले अच्छे नहीं होते, मौन रहता है, बगुला बोलता नहीं, मौन रहता है। तो ये मौन भी, इनकी तो जान बची गई ना। एक बार की बात है कि अकबर को किसी ने कह दिया कि आपका जो बीरबल है ये तो बड़ा बुद्धिमान है, परंतु इसके परिवार के सारे लोग महामूर्ख हैं। इनकी माँ देख लो, बाप देख लो, भाई देख लो, भौजाई देख लो, भतीजे देख लो, सब डफोल संख है, कोई काम के नहीं। अकबर को जाकर खबर दी तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल जी आपके सारे परिवार को यदि लेके आओ ना यहां। बीरबल ने कहा, क्यों, परिवार से क्या करोगे? नहीं, मैं मिलना चाहता था, मैंने सुना है तुम्हारा सारा परिवार मूर्ख है। ये किसने कह दिया? यदि सारे परिवार के लोग मूर्ख होते तो मैं भी मूर्ख होता, और मैं मूर्ख होता तो आप मुझे यहां नौ रत्नों में कैसे रखते? बात तेरी भी सही है, सुनता हूं तो उस पर भी विश्वास। तुम यहां ले आओ ना, तेरे परिवार की परीक्षा करूंगा, लेके आओ। बादशाह की आज्ञा है। बीरबल ने उनको सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। बिचारों ने कभी अच्छे कपड़े पहने नहीं थे, वो जो पहनना नहीं जानता और उसको अच्छे कपड़े दिए जाए, उसके अपने आप लोगों को पता चल जाता है कि जो पहना तो है लेकिन इसको पहनना आता नहीं है। कपड़े अच्छे पहने लेकिन पहनना आता नहीं है। तो बीरबल को कहा कि लाओ, परिवार को ले आया। बीरबल ने पहले कह दिया कि कितना भी तुमको राजा डराए, धमकाए, लुभाए, कुछ भी बोलना नहीं आपस कुछ, ठीक है। राजा, अच्छा बीरबल, ये आपके परिवार है, ये आपके पिताजी है, ये आपके माताजी है, आपके पिता तो मेरे पिता, आपकी माँ मेरी माँ, आपका भाई मेरा भाई, वाह वाह वाह। अब बोलो, बीरबल के पिताजी से कहा कि इनसे कुछ हम बात करना चाहते हैं। तो कहा कि वो चुप रहे, आपका नाम क्या है? चुप चुप चुप। कौन से मोहल्ले में रहते हैं? चुप चुप। बोले ही नहीं कुछ। बीरबल के कितने भाई हैं? बीरबल कौन से नंबर का भाई है? माता जी से पूछे, पिताजी से पूछे, भाइयों से पूछे कि आप, कोई कुछ नहीं बोलता। अकबर ने कहा कि वही बीरबल कोई बोलते नहीं, क्या बात है, नहीं बोलने का अर्थ क्या हुआ। अकबर ने कहा महाराज हमारे शास्त्रों में आता है मूर्खेण जाते संपर्के मौनं कार्यं मदीशिनः, जहां मूर्ख इकट्ठे होते हो वहां पर आदमी को मौन रहना चाहिए। तो आप मूर्खता का प्रश्न करते हो तो बताओ अभी क्या जवाब है कि मैंने मूर्खता का कैसे प्रश्न किया है, मेरा नाम पूछा है, इनका नाम पूछने से होगा क्या ये बताओ, ये कोई अपराधी है, अपराधियों में आए हैं क्या कि इनका नाम पूछते हैं आप, मेरा बाप कौन है, मैं आपके यहां रहता हूं, आपके यहां कोई गड़बड़ होती है मेरी जिम्मेदारी होती है, मेरे माँ बाप का नाम पूछो, मेरा गांव नाम पूछो, ये न कोई अपराधी है न कोई लेन देन है, आप जान भी लोगे तो क्या होगा, इसलिए आपके प्रश्न का इन्होंने कोई महत्व नहीं समझा है, ये तो यही समझते हैं कि मूर्खता की बातें करते हैं, कोई शास्त्र की बात करते ना आप इनसे, और शास्त्र की बात आप मेरे को छोड़ करके इनसे क्या बात करेंगे, इनसे बात करने का मतलब आप इनकी परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा लेने वाला सदा ही मूर्ख होता है, परीक्षा लेने वाला मूर्ख होता है। तो बीरबल वहां से फिर जो है अकबर ने कहा अच्छा बाबा ठीक है, हम तो समझे नहीं थे, तुम क्या समझाना चाहते हो। कहा कि महाराज मनुष्य को हर समय हर प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की बात थी। तो ये अजामिल उपाख्यान चला था। इसी अजामिल उपाख्यान के अंदर आपने भागवत में सुना होगा यमराज जी ने अपने सेवकों को कहा कि तुमने भगवान के नाम लेने वाले का दर्शन कर लिया, ऐसे तुम मेरे सेवक कहलाते हो, तो मैं तो आज भाग्यशाली हूं, मैं तो भाग्यशाली हूं, भगवान के नाम लेने वाले को यहां। फिर यमराज जी ने एक कथा सुनाई कि देखो हम आपको एक कथा सुनाते हैं जो हमारे यमलोक में बीती है। कि क्या बीती महाराज, कि दो भाई थे, दो भाइयों में बड़ा स्नेह था, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। बड़ा भाई था वो व्यापार की तरफ ज्यादा ध्यान देता था, छोटा भाई था वो सत्संग में जाया करता था। तो एक दिन सत्संग में गया तो संतों ने नाम की बड़ी महिमा लिखी बताई, कहा कि जो भगवान का नाम लेता है वो साक्षात भगवत स्वरूप होता है, जिसकी जीवा पर भगवान का नाम है वो नाम से अभिन्न हो गया तो वो भगवान से अभिन्न हो गया। तो उस छोटे भाई के मन में आया कि अरे इतने लोग आते हैं सत्संग में, राम राम करते हैं, भजन करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, परिवार में कैसे रहना चाहिए सुनते हैं, हमारे भाई जी तो कभी आते ही नहीं। भाई जी को कहा, भाई जी माने अपने बड़े भाई, कि भाई जी आप ही सत्संग में क्या, ये फालतू का समय है, साधु लोग है ना, फालतू का समय हम नहीं करते, तू जाता है वही मेरे को तो बुरा लगता है, लेकिन ठीक है तू जाता है क्या करूंगा, तू छोटा भाई रह गया मैं क्या कह सकता हूं, छोटा होता है उसको ज्यादा नहीं टोकते, तू छोटा रह गया क्या कह, तेरे को ज्यादा क्या कह। वो आकर के महात्मा जी के पास रोने लग गया छोटा भाई कि महाराज वो तो बड़े भाई साहब कभी सत्संग में आते नहीं, कभी राम राम करते नहीं, कोई नित्यनेम करते नहीं, पूजा पाठ करते नहीं। महाराज ने कहा हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या क्या कि महाराज मैं तो आपकी शरण में हूं, किसी न किसी प्रकार से मेरे भाई जी का उद्धार हो जाना चाहिए। बहुत गिड़गिड़ाया तो संतों का हृदय कोमल होता है, कल्याण के विषय में तो और ही कोमल हो जाते हैं संत, कितने ही कठोर हो पर जब सत्संग कल्याण ये बात चलती है ना कोमल हो जाए। अच्छा ठीक है, ऐसा कर कल हमको बुलावा भोजन करा रहा हूं। भोजन करा कर एक बात का ध्यान रखना कि तेरे भाई को तू एक कमरे में बंद कर देना, बस चाबी हमको दे देना, फिर हम जाने हमारा काम जाने कि ये तो काम कर दूंगा। संतों की पंगत लगी, बड़ा भाई चिढ़ रहा था छोटे पर, तो कहां साधु मोडाओं को बुला लिया यार, खा खा के मुस्टुंड हुए काम के न काज के और बेरी है अनाज के, फोकट को मिले या न खाओं में इतना नहीं ला दिया गया तो भोजन में भूखा मरता आ गया इतना दिन, खूब फटकारा होने का बुला तो लिया भाई जी। अब आ लाज रखो, घर की लाज रखो, माइतों की लाज रखो, संतों को भूखा थोड़ी निकाले, ठीक देख तू जिमा दिमाग कुछ भी कर, मेरे आंखों के सामने ये फिजूल खर्चा मैं देख नहीं सकता। तो कहा कि भाई जी अब मैं क्या करूं, ये तो सामने तो जिमेंगे भोजन तो करेंगे, तो आप ऐसा करो आप एक कमरे में बैठ जाओ, कमरे में बैठ कर गए और आप ये सब जो है सुनते सुनना ही देगा ये बंद कर दो, किवाड़ बंद कर दो। ये बात ठीक है, और वो भी यही चाहता था, कमरे के अंदर बंद कर दिया और सब करके बाहर ताला लगा दिया। संतों ने भोजन कर लिया खूब आराम से, भोजन करने के बाद अब महात्मा जी कहे कहा है तेरा भाई, कि महाराज ये रही चाबी इस कमरे में है। महात्मा ने जाके ताला खोलिया और अंदर गए, हृष्ट पुष्ट थे बाबा जी, वो था नहीं दुबला पतला बाबा जी, जाते हाथ पकड़ दिया उसके, बोल रहा कि क्यों बोलू, बोलता है कि नहीं तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं देखे। वो चिल्लाया अपने छोटे भाई को बुलाया, छोटा भाई आया ही नहीं। महात्मा जी ने पहले कह दिया कि ये चिल्लाएगा हा वो करेगा, आप लोग कोई आना नहीं, कोई नहीं आएंगे। खूब बोला अरे भाई का नाम लिया छोटोड़ा, जल्दी आओ बाबू मने पकड़ लियो, आवे ही नहीं कोई, मने व्यापार में थे खोटी कर रहा हो, थे थारे जिम लिया जाओ बोले या तो मारो हाथ क्यों पकड़ा, तू राम बोले बिना तन नहीं छोड़ूंगा। वो कितो जोर लगा ले बाबा जी और जिमेड़ा हम कब बढ़िया कड़ी पकड़ ली, कोनी छोड़ा। तो कह दिया अच्छा बाबा राम, बस छोड़ दिया बाबा जी। एक बात का ध्यान रखना, इसको बेचना नहीं, बस। अरे साधु क्यों लोगान ठगो, मारी इतनी बड़ी दुकान है, मेरे माए ने कभी कोई राम राम रो ग्राहक आयो नहीं, क्यों बेचू, मार नहीं आए तो कोई बात नहीं, कभी तने राम रो नाम बेचनो पड़े, बेचनो पड़े तो आई गणा राम राम तो नहीं बेचो, अच्छी बात ठीक जाओ को नहीं बेचा हो पक्का रहना। बाबा जी का पक्के रहना इस बात पर, ठीक इस बात पर पक्का रहेंगे हम राम राम को नहीं बेचेंगे। बाबा जी भी चले गए, कुछ दिन बीत गए, एक दिन अकस्मात हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया, बड़ा भाई मर गया, बड़ा भाई मर गया। तो उसके साहब लखन देखने गए, यमराज जी के वहां ले गए उसको, कि महाराज जी मिलावट भी करता था और तोल यूं करता था, उसमें यूं कर लेता था, यूं सब सब बताया। चित्रगुप्त ने कहा कि एक बात है महाराज, क्या एक महात्मा के कहने से इसने राम का नाम लिया है, अच्छा राम का नाम लिया है और महात्मा के कहने से ले लिया, तब तो भाई इसके पाप का फल तो अपन नहीं भुगता सकते। अब उसका दिमाग ठनका, अरे महात्मा के कहने से एक राम का नाम लिया, मेरे जीवन के सारे अपराध के लिए यमराज जी कुछ नहीं कर सकते। यदि मैं प्रेम पूर्वक रोज महात्मा के कहने से माला फेरता होता तो मेरे पास कितना नाम का संग्रह, नाम का भंडार होगा। यमराज जी ने कहा कि एक राम के बदले में क्या लेना चाहते हो, जो आप लेना चाहते हो ले लीजिए। उसने कहा बेचूंगा नहीं, यहां काम आया उसका न बेचने का था, मैं बेचूंगा नहीं। तो कहा कि अब क्या करें। चित्रगुप्त से पूछा अपने यहां यमलोक का नियम क्या है कि जो राम का नाम लेके आ जाता है कुछ नहीं लेता, उसको कंधा दे करके उसको विमान में बैठाकर आप कंधा दो और उसको इंद्रलोक में ले जाओ। तब उसको ब्रह्मा जी ने कंधा दिया, विमान के कंधा दिया, इंद्रलोक में ले ले। इंद्रलोक में भी वही बात। इंद्रलोक में इंद्र ने पूछा कि एक राम की क्या कीमत लोगे, देखो ये कितने वैभव पदार्थ कुछ भी लोगे, बेचूंगा तो नहीं। उसने देखा कि यमराज जी को नहीं बेचा तो आज देखो मुझे स्वर्ग के इतने बड़े बड़े सुख दिख रहे हैं, तो इसको भी नहीं बेचे, देखे क्या होता है, क्या नहीं बेचूंगा। अब ज्यादा क्या बताए। अच्छा नहीं बेचोगे तो फिर चलो, हमारे यहां का नियम यह है कि यदि यहां राम का नाम लिया हुआ आ गया स्वर्ग में तो उसको ब्रह्मा के लोक में ले चलो, चलो सर। और इंद्र उसके खुद पालकी में हाथ लगाएगा। तो ले गए उसको ब्रह्मा के लोक में। ब्रह्मा जी ने कहा अरे बड़ा अच्छा हुआ, तू राम की नाम की कीमत बता, 360 गुणा तो देवताओं की उम्र होती है और देवताओं से कितना ही गुणा ज्यादा मेरा दिन मान होता है, 1000 चतुर्युगी का दिन, 1000 चतुर्युगी की रात, ऐसा मेरा ब्रह्मलोक है। राम के बदले में ब्रह्मलोक लेगा, बोल ले कितना लंबा चौड़ा तेरे को ये लोक, कितने लंबे समय तक आराम से रहेगा। नहीं लूंगा। अरे ब्रह्मलोक नहीं लेगा, नहीं लूंगा, बेचूंगा तो नहीं राम। ब्रह्मा जी भी सख पकाएगी, नियम क्या है साहब, जो राम राम लिया हुआ आए और वो कोई चीज न खरीदे उसके बदले में तो क्या करेंगे साहब। ब्रह्मा जी कंधा लगाओ और विष्णु के लोक में ले जाओ। विष्णु भगवान के लोक में ले गए। विष्णु भगवान ने वहां पर कहा कि अरे भैया तुमने बेचा नहीं किसी को, क्यों बेचूं महाराज, यदि बेच देता तो आज आपके दर्शन कैसे होते। तो यमराज जी, इंद्र और ब्रह्मा तीनों ने कहा कि महाराज एक राम के बदले में आप इसको क्या देंगे, ये क्या मांगता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे स्थान पर आ गया तो यद गत्वा न निवर्तनते वाली जगह पर आ गया, यहां से तो और लोग तो मैं कहीं भेज नहीं सकता हूं, बैकुंठ में आने से रहेगा, इसके कर्म धर्म सब पीछे के सब खत्म हो गए, तभी तो यहां आया, नहीं तो आता कैसे। तब से ये बात हुई कि भाई भगवान के नाम की कोई कीमत नहीं थी, अनंत गुणा भगवान के नाम, कोई ब्रह्मा जी निर्णय नहीं कर सके, अब अनंत गुणा ही बोलेंगे और अपने पास शब्द ही क्या है। ऐसे भगवान के नाम का संबंध अजामिल का हुआ और अजामिल फिर भगवान के धाम में पहुंच गया। इस प्रकार से अजामिल प्रसंग भयो, ये अजामिल के प्रसंग में 12 भक्तों के नाम दिए। अब आगे 16 पार्षदों के नाम बताएंगे, वो कल चलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण।